તારીખ 11/1/1994 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 83 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું દેવલાલીમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 96 બી સાઈડમાં ડિસ્ટર્બન્સ છે.
इन दिनों में संपर्क में आए हुए हैं, उनको ये पत्र लिखा गया है. पत्र का मुख्य विषय जो है आत्मोन्नति का प्रशस्त क्रम कैसा होना चाहिए.
साक्षरता
વિદ્વાન સારા એવા વિદ્વાનો અત્ર કુશળતા હૈ આપકે વર્ષ ચાહતા હું आज दिन आपका जिज्ञासु पत्र मिला है. वो कुछ जिज्ञासाएं व्यक्त की है उन्होंने, बड़े विद्वान होते हुए भी जिज्ञासा व्यक्त की है. तो आकर्षित हुए थे, वो तो विशिष्ट व्यक्ति है, वो तो विशिष्ट पुरुष है. उम्र तो 22 साल की है, छोटी उम्र पर, लेकिन वो आकर्षित हुए थे. 22 साल की उम्र में वह जिज्ञासु पत्र का उत्तर बदल उसके सामने है. जो पत्र भेजना चाहिए यह पत्र यह है, ऐसा करके उत्तर लिखते हैं. इस पत्र में गृहस्थाश्रम संबंधी मेरे कितने विचार आपके समक्ष रखता हूँ. इस पत्र में गृहस्थाश्रम संबंधी मेरे जो विचार हैं वो तो आपके समक्ष रखता हूँ. इस ऐसे विचार रखने का हेतु मात्र इतना ही है कि कोई भी प्रकार से उत्तम क्रम में आपका जीवन का वर्णन भी होए. देखने का मेरा तो हेतु एक आपका जो जीवन है उसमें कोई उन्नति क्रम आ जाए, इस हेतु से आपकी जिज्ञासा के अनुसार मैं उत्तर लिखता हूँ. और यह क्रम जब से आरंभ करना चाहिए, शुरू करना चाहिए, यह काल फिलहाल ही आपने भी आरंभ किया है. वो करीब 2 साल बड़े थे, ऐसा 22 साल के थे, कोई 24-25 साल के थे, गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया था. इनकी शादी हुई थी तो वो क्रम आपने शुरू किया है, आरंभ किया है. इसलिए मेरे विचार है कि आपको गृहस्थाश्रम में आते हुए भी अपना आत्मिक जीवन की उन्नति किस क्रम से आपको करनी चाहिए, इस विषय में मैं मेरे विचार लिखता हूँ. चाहे तो इससे छोटे फिर भी उनको जिज्ञासा के हिसाब से उत्तर दे रहे हैं. अर्थात यह क्रम बताने का उचित समय है आपके लिए. यह क्रम बताना तो बिल्कुल उचित समय है कि आपने प्रवेश किया है गृहस्थाश्रम में, तो आपको जानना कुछ बातें जरूरी है. तदुपरांत बताया हुए क्रम के विचार बहुत सांस्कारिक होने से पत्र द्वारा निकले हुए हैं. मेरे विचार बहुत सांस्कारिक है जो पत्र द्वारा निकल गए हैं. आपको और किसी को भी, आपको या किसी और को भी आत्मोन्नति करने के लिए, आत्मोन्नति इच्छने वाले को या जीवन के प्रशस्त क्रम को इच्छने वाले को यह अक्सर अधिक उपयोगी हो जाएगा, ऐसी मेरी मान्यता है। अवश्य उपयोगी होगा ऐसा मुझे लगता है। तत्वज्ञान की ऊंडी गहरी गुफा के दर्शन करने जाते हैं तो, अब कहते हैं कि तत्वज्ञान की गहराई में जाते हैं तो भीतर में से तो ऐसा ध्वनि निकलता है, लिखने की शैली देखो। तत्वज्ञान के गुफा में के भीतर में गहराई में जाते हैं, एक कुदरती ध्वनि निकलता है। कुदरती शब्द पढ़ा है, नेपथ्य नाचे हुए वो ध्वनि निकल ऐसे, असल शब्द से गुजराती भाषा में, हिंदी में बराबर ना निकला आपने, एक कुदरत के वातावरण में से एक ध्वनि निकलता है। कि तुम कौन हो, पहला ये ध्वनि निकलता है कि तुम हो कौन वास्तव में। मनुष्य शरीर है तो क्या तुम मनुष्य हो, स्त्री पुरुष का शरीर है तो क्या तुम स्त्री पुरुष हो, कौन हो तुम। पहला तो ध्वनि ये उठता है कि तुम वास्तव में कौन हो, पर कहां से आए हो, इधर आए तो कहां से आए हो, इधर क्यों आना हुआ, कहां से आना हुआ है, और क्यों कारण से आए हो, ये जिज्ञासा में से उसको ले जाते हैं। और तुम्हारे अगल बगल में समीप में ये सब क्या है, ऐसा ही क्यों, मेरे आसपास के समीप के ऐसा ही इस प्रकार क्यों, दूसरे का ऐसा ही क्यों, उसका ऐसा ही क्यों, उसको ऐसा ही क्यों, सबका तो एक सा है नहीं, तो ऐसा ही क्यों। विचक्षण हो तो उनको लगेगा कि कोई कारण कोई गहरा है इसके पीछे, गहन कारण है कोई, मामूली बात
नहीं,
नहीं। आपको स्वयं की प्रतीति है क्या, एक प्रश्न आ रहा है, आपको अपने आप की स्वयं की प्रतीति है क्या, तो मेरा अस्तित्व है या नहीं है। तो कई लोग ऐसा मानते हैं कि जब मृत्यु होती है आत्मा खत्म हो जाती है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, जीव होते हैं, उसका नाश हो जाता है, इसी का नाम मृत्यु, क्योंकि नाम ही मृत्यु है, वो भी मर जाता है, तो इसकी प्रतीति है, अपना अस्तित्व की प्रतीति है। अस्तित्व होना, स्वतंत्र अस्तित्व होना, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, किसी का आधार बिना का, और वो शाश्वत अस्तित्व, प्रतीति का विषय ऐसा होना चाहिए। ऐसा कोई प्रतीति कैसी है, प्रतीति आपको आपकी स्वयं की प्रतीति किस प्रकार की है, यानी आप विनाशी हैं, अविनाशी हैं, आप विनाश होने वाले हैं या नहीं विनाश होने वाले हैं, या कोई त्रिराशि है, मेरे अंदर विनाश हो गए, अविनाश हो गए, ऐसी कोई तीसरी बात भी है, इसको त्रिराशि बोल दिया है, आप विनाशी हैं, अविनाशी है, या कोई त्रिराशि भी है, क्या प्रतीति है आपकी, आपके अस्तित्व की प्रतीति कैसी है आपको, आपको स्वयं की आपकी प्रतीति कैसी लगती है, विनाशी लगते हैं, अविनाशी लगते हैं, या कोई तीसरी बात तो लगती है, किसी भी दो भी लगता है। ये प्रश्न आपको अगर तत्व ज्ञान की गहराई में जाना हो तो ऐसे प्रश्न उठते हैं भीतर में से, ऐसे ऐसे अनेक प्रश्न हृदय में, ऐसे ऐसे अनेक प्रश्न हृदय में ये ध्वनि से प्रवेश करेंगे, और इस प्रश्नों से जहाँ आत्मा गिरा हुआ है, वहाँ फिर दूसरे विचारों को बहुत बहुत थोड़ा अवकाश रहेगा। ऐसे ऐसे विचार जब आ जाएंगे तो फिर जो दुनियादारी के जो अनेक प्रकार के संयोग को ऐसा करो ठीक करो वृद्धि करो, संयोग बढ़ाना ठीक, उसका संरक्षण करना, इस प्रकार के जो विचार हैं इसका अवकाश कम हो जाएगा। इतनी गहराई में जाने से दूसरे विचार हैं वो कम हो जाएंगे। यदि ये विचारों से ही अंतिम सिद्धि है, यही विचारों का विवेक से जो अज्ञावाद सुख की इच्छा है उसकी प्राप्ति होती है, यही विचारों के मनन से अनंत काल की उलझन मिट जाएगी, टल जाएगी। ये विचार ऐसे आने चाहिए तत्व ज्ञान के विषय में प्रवेश कर, प्रवेश काल में भी ऐसे जिज्ञासा होनी चाहिए, और ऐसे विचारों से दूसरे विचार हट जाएंगे, और जो जीव को पूरा सुख हमेश के लिए चाहिए, अव्यवाद सुख चाहिए, इसकी प्राप्ति के लिए ये विचार सही है, और इसके मनन से, इसके चिंतन से या इनके समाधान मिलने से सब प्रकार की उलझन मिट जाएगी। तथापि यह सभी के लिए नहीं है, सभी के लिए नहीं है मतलब बहुत कम जीव ऐसे विचारधारा में आते हैं, बाकी तो सब अपने अपने संयोग के पीछे उतने लगे हुए हैं कि उनको ऐसे विचारों में जाने की कोई फुर्सत नहीं है, इसलिए सभी के लिए ये बात संभव नहीं है। वास्तविक दृष्टि से देखने से उनकी अंतिम हद तक पाने वाले, इन अंतिम हद पाने वाले पात्रों की न्यूनता बहुत है। ऐसे प्रश्न जितने लोगों को, जितने जीवों को उठते हैं वो उनके बॉटम में चले जाए, अंतिम हद में, इसकी गहराई में जाकर के इसका पूरा ताग ले लें, ऐसा पात्र भी, इसमें से भी बहुत कम निकलते हैं। एक तो ऐसे विचार सूझते नहीं, जिन लोगों को ऐसा विचार आता है वो भी उनकी पूरी पूरी छानबीन करके उसका जो मर्यादा है, आखिर की हद है, वहां तक पहुंचने वाले लोग काल बदल गया है, वर्तमान काल है वो बदल चुका है, काल बदल गया है, और इस विषय की उतावली से अथवा और शौचता से अंत लेने को जाएंगे तो उसमें से जहर निकलता है। क्या लिखते हैं कि इस विषय में उतावली काम में नहीं आती, अधीराय मुख शब्द पीड़ा से गुजराती माँ धीरज खो करके धीरज से इस विषय में प्रवेश करके कोई इसका अंत लेने को जाता है तो वो निष्फल होता है या दुखी हो जाता है, या अशौचता से मैंने क्लेश करके, क्लेश से अगर इसका अंत लेना चाहता है तो काय क्लेश अधिक करते हैं ना, तो क्लेश प्राप्त करके भी इसका अंत लेना चाहता है इस विषय का, तो उसको अमृत नहीं मिलता है, जहर मिलता है, यानी दुखी हो जाता है वो भी। और ऐसे भाग्यहीन अपात्र दोनों लोक से भ्रष्ट होता है, इसका इधर का जीवन भी बिगड़ जाता है, आगे का जीवन भी, इस लोक और परलोक दोनों में उनकी जो गति है वो दुखी हो जाता है दोनों गति में। इसलिए अमूर्ख संतों को अपवाद रूप मान करके बाकी जीवों को इस क्रम में आने का और यह गुफा का दर्शन करने का बहुत लंबा समय तक अभ्यास होने की जरूरत है। किसी महात्मा को बात करके, संतों को बात करके, मेरे कोई पूर्व के संस्कारी हो, कुछ पूर्व से ज्ञान लेकर ही आए हो, तीर्थंकर जैसे हो, तीन ज्ञान दिन ज्ञान लेके आए हो, समय ज्ञान में जन्म हुआ हो, या कोई संस्कार लेके आए हो, उसको छोड़ करके सामान्य लोगों को तो उसके अधीनस्थ से काम लेना ये नहीं चाहिए, उसको बहुत अभ्यास की जरूरत है, बहुत समय तक अभ्यास की जरूरत है इस लाइन में। कदापि यह गुफा के दर्शन की उनकी इच्छा न हो तो भी अपने इस भव के सुख के अर्थ भी जन्म और मृत्यु के बीच के भाग का कोई अच्छी तरह व्यतीत करने के लिए भी ये अभ्यास की अवश्य जरूर है। क्या है कि कोई तत्वज्ञान की गहरी गुफा में जाना नहीं चाहता है, वो हमारा बूता नहीं है,
इच्छा न हो,
नहीं अशक्यता पता नहीं लागे, इच्छा न उठाए, तो आप जो ज्ञान तो बहुमूल्य चीज है, तत्व ज्ञान का विषय तो इसका कोई अंत ही नहीं आता है, किसी को अंत तो पा ही नहीं सकते तत्व ज्ञान का अंत का, तो इसका अंत मिलता ही नहीं, सब बीच में थक जाते हैं, हमारा तो काम ही नहीं है। उनके लिए भी अपना आयु अच्छी तरह व्यतीत करने के लिए, तो आयु शब्द नहीं लिख करके क्या लिखा कि जन्म और मृत्यु के बीच का समय को ठीक व्यतीत करने के लिए। मैंने जो इस भव का जीवन है वो तो अच्छी तरह शांति से चैन से बिताने के लिए, अपना दुखी बहुत हो जाएंगे। ये तत्व ज्ञान का अभ्यास की अवश्य जरूर है, यानी कि किस क्रम में जीवन जीना चाहिए उसकी जरूरत लगती है हमको। यह कथन अनुभव गम्य है, ये जो हम कहते हैं वो हमारे अनुभव से कहते हैं, छोटे थे फिर भी अनुभव से कहते हैं, तो ये हमारे अनुभव की बात करते हैं।
जन्म के मरण सुधी में तीव्र आकुल आकुल जीवन है, हाँ तीव्र कषाय
हम सब ऐसे के लगभग आकुलता में जीवन जीते था, ऐसे बहुत दुखी
शांति बाहर शांति हो तो
है बाहर में शांति
पाए शांति हो तो
बाहर में शांति देखा पाए ठीक हुआ अंदर में तो संतोष अग्नि प्रज्वलित होती है। लोग क्या कृत्रिम आनंद के पसंद प्रसंग रखते हैं, कोई क्लब में जाते हैं, कोई खेलने को जाते हैं, कोई एंटरटेनमेंट के अलग अलग प्रकार के जो साधन हैं, तो कोई अपने उनको घर बुलाते हैं लोगों को, या कुछ दूसरे के घर को जाते हैं, और बात बातों में खास दम नहीं हो तो बस बात खुशी हो जाते हैं, ये बात क्या है सर, भीतर में क्लेश बहुत है, तो उसको छिपाने के लिए या उसको कम महसूस करने के लिए एक कृत्रिम आनंद देने का प्रयास जीव करता है, क्या करता है ये करता है। तो जीवन अच्छी तरह व्यतीत करने के लिए भी यह अभ्यास की अवश्य जरूरत है, यह कथन अनुभवी गम है, बहुतों को भी अनुभव में आया है, एक अकेला मारा मेरा अनुभव नहीं है, बहुत विवेकी जन को भी ऐसा ही अनुभव हुआ है। बहुत आगे सब पुरुषों इसके लिए विचार कर गए हैं, उन्होंने इस पर बहुत अधिक मनन किया है, और आत्मा को खोज करके इसके अपार मार्ग में से होने वाली प्राप्ति का बहुतों को भाग्यशाली होने के लिए अनेक क्रम निश्चित किए हैं। ऐसे महात्मा जयवान हो और उनको त्रिकाल नमस्कार हो, तो मान क्या है, क्या लिखते हैं कि हमको अनुभव गम्य है, दूसरे तत्व को बहुतों को ऐसा अनुभव हुआ है, और भूतकाल में अनेक आर्य सत्पुरुषों इसके लिए बहुत विचार करके गए, बहुत उन्होंने गहरा चिंतन किया है, इस पर अधिक चिंतन किया है, इसमें से क्या निकाला कि आत्मा की खोज किया है, आत्मस्वरूप की खोज किया है, यहाँ से मूल विषय पर आते हैं कि क्या किया जीवन में सुखी होने के लिए, क्या कि आत्मा की खोज किया, तो इसलिए लिखते हैं कि कहीं को ऐसा लगता है कि गृहस्थाश्रम में नहीं जा करके त्यागी होगा तो आत्मा मिलेगा, आत्मदर्शन होगा, वरना आत्मदर्शन हमको तो नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है, आत्मदर्शन तो गृहस्थाश्रम में भी हो सकता है। आत्मा का खोज कर उसके अपार मार्ग में से होने वाली जो प्राप्ति है, मैंने शांति की प्राप्ति है, आनंद की प्राप्ति है, उसके लिए भाग्यशाली होने के लिए उन लोगों ने अनेक क्रम है वो निश्चित किए हैं, उसको नमस्कार करते हैं और उसके लिए जयकार भी लिखा है। हम थोड़ी देर के लिए तत्वज्ञान की गुफा को विस्मरण करके लिखने की क्या शैली है, थोड़ी देर के लिए तो तत्वज्ञान की गुफा वाली बात को थोड़ी साइड में रख करके आर्य पुरुषों ने उपदिष्ट किया ऐसे अनेक क्रम पर आने के लिए तत्पर हैं। पंडित बेटी जी 2 साल पहले शादी हुई है, वो 20 साल की उम्र में वो गृहस्थाश्रम में प्रवेश हुए थे, तो इनके लिए हम तत्पर हैं। उस वक्त इस वक्त बता देना योग्य ही है कि पूर्ण आह्लाद कर जिसको माना है, परम सुख कर, परम हित कर, और हृदय में जिसको माना है ऐसा ही है, अनुभव गम्य है, यह तो वही गुफा का निवास है। फिर वहां ले गए गुफा में, जैसे कि लिखा कि गुफा के कम को साइड में रखकर विचार करिए, विचार करेंगे तो उस क्रम पर आने के लिए हम तत्पर हो सकते हैं। इस उम्र में इस परिस्थिति में हो सकते हैं, लेकिन उसमें बताना आवश्यक है कि जिसको हमने पूर्ण आह्लादकर माना है, मैंने आनंददायक माना है, परम सुख पर माना है, हितकर माना है, और हमारा हृदय के स्थान में माना है, और ऐसा ही है, हमको अनुभव गम्य भी है, वह तो ये गुफा का निवास है और निरंतर उसकी ही जिज्ञासा है। मैंने हमारे जीवन में तत्व ज्ञान का अभ्यास होना ही चाहिए। क्या ले जाते हैं, तत्व ज्ञान का अभ्यास अवश्य अवश्य होना चाहिए, उसकी गहरी गुफा में जाने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए समय और शक्ति कुछ इस पर रख लेना चाहिए, भले ही कोई गृहस्थाश्रम में हो, लेकिन तत्व ज्ञान में जाने के लिए उसके पास समय और शक्ति होनी ही चाहिए। पूरा का पूरा जीवन अपने संयोग की वृद्धि करने में, या संयोग को जो भी है उसको बचाने के लिए, उसका संरक्षण करने के लिए व्यतीत हो जाए, वो बात ठीक नहीं है। ऐसा है कि वो जिस उम्र में वो लिख रहे हैं और जिसको लिख रहे हैं, उनका गृहस्थाश्रम में दोनों का प्रवेश हुआ है, तो गृहस्थाश्रम में प्रवेश हुआ है, तो गृहस्थाश्रम में प्रवेश होने पर भी सत्पुरुषों ने मार्ग का क्रम उद्दिष्ट किया है, वो कैसा है, उस क्रम पर हम आएंगे। तत्वज्ञान का क्षेत्र बहुत लंबा चौड़ा है, विशाल है, और हमारा इधर कोई पत्र लिखने का हेतु है तो कहाँ से शुरू करना और कैसे आगे बढ़ना है। क्रम विषय पत्र लेते हैं क्या, थोड़ा और स्पष्ट कर दें कि हम लोग भी तत्व ज्ञान का अभ्यास करते हैं, करते हैं नहीं करते हैं, कराते हैं, कभी हमने इस बात पर ध्यान दिया है कि इस लाइन में जाने के लिए क्रम क्या है? हाँ, बस पर हमारा ध्यान गया क्या कि किसी भी जीव को जो भी इसकी योग्यता हो, उस जिस योग्यता में वो खड़ा है उसके लिए आत्म उन्नति में आने के लिए कौन सा क्रम है, इसका कभी विचार किया है क्या? अगर हम इसका विचार नहीं करते हैं तो क्रम विपर्यास होने की संभावना, करीब करीब क्रम विपर्यास ही हो जाएगा ऐसी संभावना है। और इससे हमारा जो समय और शक्ति है वो तो सब निष्फल हो जाएगा, फेल हो जाएंगे, यही कारण है। इसलिए बहुत तत्व ज्ञान के अभ्यास करने वाले को क्रम विषय विचार ही नहीं आता है कि क्रम क्या होना चाहिए। तो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, मुद्दा है यह, इसका बहुत महत्व है। और जो क्रम से प्रवेश करके क्रम से आगे नहीं बढ़ते हैं ऐसे लोगों को आत्म उन्नति स्वच्छंद से करना है, ऐसा ज्ञानी ने बोला है। क्या ये स्वच्छंद से करना चाहता है? स्वच्छंद होने क्या कि जो भी वो क्रिया करते हैं, कार्य करते हैं, इलाज करते हैं, जिस मार्ग पर वो चलते हैं, ये अपना मन माने उपाय है, सब जैसा आपने को ठीक लगता है वैसा करते हैं। जैसे किसी को शरीर अच्छा है तो व्रत नियम दान करेगा, उत्तम बल हो गया है, पैसे हैं तो यात्रा निकालो, वो करो, दान दो, वो करो, वो धन बल हो गया। बुद्धि बहुत है, शास्त्र ज्यादा पढ़ो, ये मन बल हो गया है। मन बल, तन बल, धन बल, ये सब प्रयोग करेंगे। जिसके पास जो भी है उसकी रुचि उसको हो जाएगी इसको व्यय करने के लिए। बुद्धिवानों को बुद्धि व्यय करनी है, पैसे वाले को पैसा का व्यय करना है, शरीर वाले को शरीर का व्यय करना है, तो अपनी मनमानी सब करने लग जाते हैं। ऐसा आत्म कल्याण कभी होता नहीं है, इस प्रकार से नहीं होता। छोटे से छोटे काम में भी काम करने की पद्धति होती है, हर व्यवसाय में, हर घर काम में भी ऐसा होता है, रसोई में भी ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कि सब चीज एक साथ डाल देते हैं, जब भी जिसकी जरूरत पड़ती है तब डालते हैं। जैसे हलवे का दृष्टांत देते थे गुरुदेव, कि पानी पीछे से डालना, आटा पैन में पहले घी में सेकना और पानी पीछे से डालना, एक साथ डालेंगे तो तीनों बिगड़ जाएंगे, खाने लायक चीज नहीं रहेगी, फेंक देना पड़ेगा। एक सामान्य बात है तो उसमें भी क्रम है, तो सिद्धालय तक पहुंचना है उसमें कोई क्रम बात क्रम जैसी बात नहीं हुए, ऐसा विचार क्यों नहीं आता है? वक्त वक्त तय करेंगे, पहले उनको पाठमाला पढ़ाओ, आप लोग क्या करेंगे तो कृष्णोत्तर माला पहले पढ़ाओ, पहले शब्दार्थ पढ़ाओ, पहले ये पढ़ाओ, जैसे स्कूल में आप सिखाते हैं वैसे उसमें एक पद्धति ले लेते हैं। ये भी एक बुद्धि का व्यवसाय हो जाएगा, मन का व्यवसाय हो जाएगा। इसलिए इस मार्ग में क्रम क्या है, इस पर कृपालु देव ने मनसुख राम सूर्य राम भाई का ध्यान खींचा है कि कोई क्रम जैसी चीज है। इसलिए तत्व ज्ञान को थोड़ा साइड में रखो पहले। क्या तत्व ज्ञान की बहुत बातें हैं, इसके क्षेत्र बहुत विशाल है, उसको थोड़ा साइड में रख करके पहले क्रम का विचार करो। अगर क्रम का विचार नहीं किया जाएगा तो आपकी जो प्रवृत्ति है वो सफल होने की कोई परिस्थिति नहीं बनेगी। और ऐसा ही हुआ है, अब तक जो हुआ है वो ऐसा हुआ है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। सारे ग्रंथ में क्रम विषयक यही एक ही पत्र है, पूरा पत्र में एक ही मुद्दा को उपसाया है। तो तत्व ज्ञान के विषय को भी साइड में रखने को एक दफे लिख दिया है, तो पहले क्रम क्या है वो समझो।
पत्र नंबर 83
83 देखते हैं वो बात
तो ठीक
है, चर्चा करेंगे इसमें क्या चर्चा तो करेंगे। क्रम पर आने के लिए क्या पहले लक्ष्य में ये बात ले लो तो पहला कदम हमें क्या रखना है, तो क्या है कह रहे की योग्यता अलग अलग है, एक स्तर पर एक योग्यता समूह की तो नहीं होती, तो इनके लिए क्या शुरू करना, इनके लिए क्या शुरू करना, इनके लिए क्या शुरू करना, कौन बताएगा? शास्त्र में तो समस्त गत उपदेश है, प्रवचन सुनने को जाएंगे तो समस्त गत जाएंगे, इसको ऐसा कहना उसको ऐसा कहना एक घंटे में वो तो संभव नहीं है, जो भी शास्त्र पढ़ेंगे जो भी शास्त्र चलता होगा तो शास्त्र के अनुसार बातें आएंगी, तो या तो सुनने वाले या पढ़ने वाले में इतनी बुद्धिमत्ता हो कि वो स्वयं कर्म को समझ करके मुझे पहले क्या करना है पीछे क्या करना है मेरे काम की बात इतनी इतनी आई तो उसमें मुझे शुरुआत कहाँ से करना चाहिए फिर क्या करना चाहिए फिर क्या करना चाहिए। किसी भी पेशेंट को ऐसी खबर होती नहीं है, उनको तो पूछना पड़ता है कि दवाई कब लेना खाना कब लेना क्या लेना नहीं क्या नहीं लेना सब पूछना पड़ता है, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है कि मुझे क्या अनुकूल है मुझे क्या प्रतिकूल है कौन सी दवा मेरे लिए है और कब कब कौन सी दवा लेनी है। दवाई तीन चार दे दिया पहले ये लेना बाद में ये लेना लेने के बीच में इतना समय रखना वो कहीं से बहुत सी बातें हैं। जब शरीर सुधार में भी ये सब बातें आती हैं तो आत्म सुधार अनादि से जो बिगड़ा हुआ आत्मा की हालत है बिगड़ी हुई अनादि से हालत है क्रॉनिक डिजीज है अनंत काल का उसके लिए भी क्रम का विषय बहुत महत्वपूर्ण है अति महत्वपूर्ण है। जिसको बहुत तत्व ज्ञान में अभ्यास करने वाले का ध्यान नहीं है वो आजकल स्पष्ट देखने में आता है। अच्छे अच्छे विद्वान हैं अच्छे अच्छे पंडित लोग हैं आप पूछेंगे ये उन्नति का क्रम क्या है, शायद इस विषय की चर्चा ही कहीं नहीं चलती है, क्रम विषय की चर्चा नहीं चलती आजकल तो कैसे सफलता मिले मिलेगी नहीं। काम की व्यवस्था सुव्यवस्था कुछ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए ये सवाल है कि होनी ही चाहिए, और महापुरुषों ने आर्य पुरुषों ने सत्पुरुषों ने उसके क्रम उपदेश किया है क्रम का भी उपदेश किया है, हमारा ध्यान नहीं गया अलग बात है कि उपदेश तो आया ही है। श्री गुरुदेव का जो सूत्र है हम अपनी चर्चा में ज्यादा लेते हैं कि पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत, तो इस क्रम की शुरुआत लिया है हमने, आपको आत्म कल्याण करना हो भाव भ्रमण से छुटना हो या दुख से मुक्त होना हो तो पहले इस तरह से शुरुआत होनी ही चाहिए, उसमें दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो हम इसका विचार भी नहीं करते हैं क्रम में आएंगे तो कैसे, क्योंकि इस पर हमारा ध्यान नहीं है हमारा विचार कोई नहीं चलता है तो जो मन में आए वो कर लेते हैं, उसमें नुकसान होता है लाभ तो होता ही नहीं उसमें नुकसान होता है ये बात है। पत्र में एक ही पॉइंट पर सारा पत्र है एक महत्वपूर्ण मुद्दा को लेकर के ही सारा पत्र लिखा है, सामने विद्वान थे ना अभी तत्व ज्ञान में तो बहुत से उनकी भी पढ़ाई होगी उनका भी थिंकिंग होगा, जब तो इतने फेल थे उनको तो प्रतिष्ठित आदमी थे अच्छे प्रतिष्ठित विद्वान थे। तो એ વિષયની ચર્ચા આપણે ક્યાંય થતી મેં તો સાંભળી નથી.
હવે એના ઉપર
2013 થી મારો પ્રવેશ છે. આપણે 14 થી ગણીએ, પેલા 6 મહિના કાઢી નાખીને ચાલુ. 14 થી 37 ઉપર દેહરાદૂન થી માંડીને આ બધું, કોલકાતા મદ્રાસ થી માંડીને બધા, જ્યાં રાજસ્થાન, જયપુર, અજમેર, ક્યાંય કરવું ચર્ચા ક્યાંય નથી. કેવું વિચિત્ર પરિસ્થિતિ છે. આપને કઈ સુનિયો તો બતા દો. હા, સુનિયે કઈ
ઉદયપુર સે દેવીલાલ જી કરકે આયે થે પંડિત યહાં કરને કો. તો ઉન્હોને હમને ઉનસે પૂછા થા, તો ઉન્હોને ઉસપે 2-4 લેક્ચર્સ દિયે.
અચ્છા, તો પિછલે દિનો માં હમસે મિલે હૈ, ઇધર ગયે થે તો વહાં મિલે થે. ધ્યાન આકર્ષિત ક્યાં થાય, વો બહુ પઢા લિખા વિદ્વાન હો ગયા, પડપ પડ પડ ઉપર કરકે સુન સુન કરકે મિલા કે પરંપરા ક્યાં હૈ, બુદ્ધિ વાલા તો હૈ, થોડા ધ્યાન દિયા, બાપ તો કુછ હૈ, તો કેસે ઉત્પતાન સભાગે બઢતે હૈ જાનતે હૈ. હમકો તો બહુ હાલત થોડી ગડબડ વાલી હો ગઈ હૈ, જ્યાદા સુન કરકે જ્યાદા પઢ કરકે. ધારણા બહુ હૈ, દિમાગ ભી બહુ હૈ, શોષણ ભી બહુ હૈ, લેકિન સમાધાન હોતા નહીં હૈ.
અબ કયો ન વિચાર, ત્યાંથી વજન છે. અબ કયો ન વિચાર તો હે મનુષ્ય, કછુ ઓર રહા સાધન. સદગુરુ કોઈ ને ભેદ,
સદગુરુ કોઈ
ને ત્યાં આગળ ખાસ ધ્યાન દેવું છે.
इनके लिए तुम्हें कोई अनुभवी पुरुष के पास जाना ही पड़ेगा. कौन सा रहस्य है कि बिना सदगुरु तुमको कोई बताएगा नहीं. बात लिया है तो बहुत जगह प्रत्यक्ष योग की बात तो बहुत जगह लेते ही. પ્રશ્ન તો આયા થા ક્રમ કા, કે ક્રમ ક્યાં હોના ચાહિયે, ચલા થા. બતાને કી ચીજ થોડી હૈ, દિખાને કી ચીજ થોડી હૈ. तो उन्होंने बहुत कृपा करके ये सब बातें चिट्ठी में लिख दी, तो ये बात रह गई. बाकी तो ऐसी बात तो दिखाने की होती नहीं, इसलिए बाहर आती नहीं. बाहर आते नहीं तो दूसरों को मिलती नहीं, ये हालत हो जाती है, ऐसी बात बन जाती है. ये तो कोई युवा भी वो ऐसा बना है. तो उन्होंने ये बातें लिख दी, લખી હોય બાત રહે ગઈ. ક્યાં ચીજ હે સમજમાં કે લીધે નિમિત્ત પડતા હૈ કે વો ચીજ કેસી હોતી હૈ, ક્યાં હોતી હૈ. અનુભવ ગમ્ય હૈ ઓર વહી ઇસ ગુફા કા નિવાસ હૈ ઓર નિરંતર ઉસી કી હી જિજ્ઞાસા હૈ. જિજ્ઞાસા મને પ્રાપ્તિ કી ભાવના હૈ. ફિલહાલ ऐसी जिज्ञासा पूर्ण होने के कोई चिन्ह दिखाई नहीं देते तो भी क्रम से क्रम में इस लिखने वाले का भी विजय होगा, ऐसी उसकी अवश्य शुभाकांक्षा है। मैंने भी इस क्रम में प्रवेश किया है और मेरा भी जय होगा। देखो अपनी बात लिख दी, इस क्रम में इस लेखक का भी जय होगा और इसकी शुभ आकांक्षा भी है और मेरी भावना भी है कि जिस क्रम से मैंने ये जीवन शुरू किया है अवश्य उसमें मुझे मेरी जीत भावना है वो अवश्य सफल होगी, ऐसी आकांक्षा है और ऐसा अनुभव गम्य भी है। और ये बात हमको अनुभव से भी ऐसा लगता ही है। मैंने प्रारंभ में भी ये अनुभव पद्धति होने से अपने अनुभव को देख करके वो लिख रहे हैं, ये हमको विश्वास आता है कि ये क्रम ठीक है, हम पूर्णता को प्राप्त हो जाएंगे। ये भी एक इस मार्ग की सुंदरता को एक विशिष्ट है कि जो यथार्थ क्रम में आता है तो उसकी पूर्णता के उसकी प्रतीत भी उसको आ जाता है कि अब मैं निष्फल जन्म होने वाला नहीं। ये भी इतनी प्रतीति आ जाती है तो अनुभव गम्य भी है ऐसा लिखा। अभी से ही यदि योग्य रीति से क्रम की प्राप्ति हो तो इस पत्र लिखने जितना समय व्यतीत करने की इच्छा नहीं है। अभी से ही यदि योग्य रीति से क्रम की प्राप्ति हो तो यह पत्र लिखने जितनी समय का अपव्यय जिसको खोटा जितना समय ने खोटी करवानी इच्छा नहीं, समय बिगाड़ने की हमारी इच्छा नहीं है, तेजी से क्रम में आगे बढ़ने के विचार हमको मालूम को रहता है। क्या सूचित करते हैं इसको खोलें कि अगर क्रम में प्रवेश होता है तो शीघ्रता से पूर्ण करने का भाव आया करता है, शीघ्रता वो जितनी हो उतनी शीघ्रता हो जाए, ये एक विशिष्टता है इस मार्ग में। शीघ्रता का भाव रहना पड़ेगा, इसलिए कितना भी विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, मनुष्य की भूमिका का, ज्ञानी की भूमिका का, मुनि की भूमिका का, पूर्णता नहीं होगी वहां तक शीघ्र होने के लिए इनके भाव चालू रहेंगे। ये यथार्थ क्रम हुआ है इसका शुभ लक्षण है ये कि कहीं वो थान पर बैठेगा नहीं, चलो समीर दर्शन तो हो गया नहीं अभी तो मोक्ष हो ही जाएगा, ऐसा होता है क्या? हो गए नहीं, उनको अपूर्व अवसर ये वो कह रहे हैं उसे, ये भाव रहेगा। आज सत्तरवा वर्ष पहले आठ पांचवा ग्रंथ में स्वद्रव्य अन्य द्रव्य भिन्न जेवो ये पहले वचन है, पीछे बताया परा लीधे नवे नव में स्वद्रव्य ना रक्षक परा थे, स्वद्रव्य ना व्यापक परा थे। हवे आ ऊपर से जो तो आ वचनों में एटली गंभीरता न लगे मानस ने, छता गुरुदेव ने पसंद शू करवा के प्रवचन ध्यान थी वाँचा ने तो समझाई गए आपने, पर प्रवचन नैमित में प्रकाशन थी गय हम पर महान परमागमों ने जो महान गाथाओ है जो गुरुदेव चिंतन का विषय था अने एना ऊपर पोते प्रवचन कर्या त्यारे आ दस वचनों ने एनी बराबरी में स्थान क्या आप थोड़ूक विचारवा जेवु छे એવું શું છે આની અંદર? બસ મેં એસી કોણ સી બાત હૈ કે પ્રવચન સાર 172 ગાથા समय सार के 50 का था, नियम सार के 50 का था, ऐसे ऐसे चुन चुन करके गाथा लिया है। और उसने इसकी भी चुनौती किया, क्या इसके लाइन में क्या रखा है कि ये जो तरा वाला शब्द है उसके छांक है, तो तरह से सब करना है। किसी क्रम में आए हुए जीव को, किसी भी साधक को, एक तरह वाली बात है, इसका जीवन का मुख्य अंग हो जाता है, इसके परिणाम का मुख्य अंग हो जाता है। एक मर्म है, एक जीव क्या भी अटकतो नहीं, त्वरा आवी જવાથી પરિણમની અંદર ત્વરાની મુખ્યતા થઈ જવાથી મુમુક્ષુ હોય, જ્ઞાની હોય કે મુનિ હોય, એ ક્યાંય અટકતો નથી। જ્યાં સુધી પૂર્ણતા નહીં થાય ત્યાં સુધી અમને ચેન નહીં પડે, એમના પત્રમાં આવે છે। જ્યાં સુધી પૂર્ણતા નહીં થાય ત્યાં સુધી અમને ચેન પડવાનું નથી। દશા તો બહુ સારી છે, આપણે 537 હોય છે ને, એની બાજુનો જ પત્ર હતો। પ્રવૃત્તિથી લાગેલો પછડાટ એમ કરીને લખતા, પણ એ પ્રવચન કરવાનું કારણ એ છે કે તો પ્રવચનમાં સમજાઈ જાય છે ધ્યાનથી વાંચે તો, કે આમાં જે ત્વરા શબ્દ છે એ શીઘ્રતાથી પ્રાપ્ત કરવાનો જે એમનો ભાર છે એ ધ્યાન ખેંચે એવો છે। આ તો 17મા વર્ષ પહેલાના વચનો છે, એ પહેલાના છે, 5મા ના છે। એ તો ઘણી જગ્યાએ આવે છે, પણ 17મા વર્ષ પહેલા આ જે વચનો છે એના ઉપર ગુરુદેવ પ્રવચન કરતા એવું બોલ્યા છે કે એમની પાસે આ ઉંમરમાં પણ 12 અંગનો સાર છે, આટલી નાની ઉંમરમાં એમણે જે આ વાત લખી છે એ 12 અંગના સાર પણ લખી છે। 12 અંગનો સાર ગયા ત્યારે હાથમાં એમના હાથમાં હતો એમ કહેવું છે, તો ગુરુદેવે કેટલું મૂલ્યાંકન કરેલું છે આ 10 વચનો ઉપર, એટલું બધું મૂલ્યાંકન કરેલું છે, એનો મુખ્ય મુદ્દો આ છે।
સમય દર્શનના પહેલાની
વાત છે, હા 17મા વર્ષ પહેલાની વાત છે,
સાધનાની તીવ્રતા છે, સાધનાની તીવ્રતા ગુરુદેવ એમાં સાધના કૃપાળુદેવની સાધનાની તીવ્રતા જોઈએ છે,
એક નેચરલ સિમ્પટમ છે આ લાઈનમાં એમ કહેવું છે। જેનો ક્રમનો પ્રારંભ થયો એ છદ્મસ્થ અવસ્થાના અંત સુધી એને એકદમ ત્વરાથી પૂર્ણતા થવા માટેનો પ્રકાર ઊભો થશે, એટલે ચાલતી દશામાં વિકાસ થતો જશે એને લઈને, તો પણ એ ક્યાં અટકશે, એને બચવાનું મુખ્ય સાધન પણ આ છે, નહીતર અટકી જાય, અટક્યા વગર રહીએ નહીં। એમાં સમીર દર્શન પહેલા અટકવાના સ્થાન બહુ છે, કેમ કે પર્યાય બુદ્ધિ છે, માટે દૂરદ્રષ્ટિ થયા પછી એ શક્યતા ઓછી છે, પણ સમ્યક દર્શન થયા પહેલા તો મુમુક્ષુને તો ફટકવાના સ્થાન બહુ છે, કેમ કે પોતે પર્યાય બુદ્ધિ છે. ક્યાં પર્યાયમાં જ્ઞાનનો ક્ષોપણ વધે, ચારિત્ર ગુણમાં ક્ષોપણ વધે તો કશાયની મનતા થઈ જાય, અહીંયા ઉઘાડ વધે જ્ઞાનના ક્ષોપણમાં. કાંઈક તો થાય જ, બે માંથી એક તો થાય જ, અને અટકાવ ગરીએ નહીં. યથાર્થ રીતે રીતિ છે ક્રમથી પ્રાપ્તિ હો તો પત્ર લિખને જીતને ભી સમય કો બિતાને કી મેરી ઈચ્છા નહીં હૈ, પરંતુ કાલ કી કઠિનતા હૈ, ભાગ્ય કી ભી મંદતા હૈ, ઓર નહીં આ રહે હૈ. વો તો કોઈ ભી બાત કરતે હુએ વો લે આતે હૈ બીચ મેં, કાલ કી કઠિનતા હૈ, ભાગ્ય કી મંદતા હૈ, ઓર સંતો કી કૃપા દ્રષ્ટિ દ્રષ્ટિ ગોચર નહીં હો રહે હૈ. ये मोक्ष मूलम गुरु कृपा लिया है, गुरु का जो श्लोक आता है ना उसमें मोक्ष का मूल क्या है तो गुरु कृपा, गुरु की कृपा हो गई मोक्ष, तो मोक्ष का मूल उसको आ गया. मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु का वाक्य वही मंत्र है, गुरु की कृपा वही मोक्ष का मूल है. ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, ध्यान भी इसका करता है, आत्मा का नहीं करे क्या? आत्मा देखा नहीं वहां तक क्या करेगा, तो ज्ञान में आया उसका ध्यान करे, तो ज्ञान में तो पहले गुरु आता है फिर आत्मा आता है. तो ध्यान मूलम गुरु मूर्तिम, पूजा मूलम गुरु पादम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा. गुरु की महिमा करते हुए लोग ऐसे कहते हैं. जिसको समझ में आती है उनको तो समझ में आती है कि क्या चीज होती है. बराबर में संतों की कृपा दृष्टि गोचर नहीं, सत्संग की क्षति है वहां कुछ भी करके डैश डैश कर दिया है, सत्संग नहीं मिल रहा है, क्या करें, परंतु क्या करें, छोड़ दिया है वाक्य को, थोड़ा छोड़ दिया है. थोड़ी बात मामूली है, थोड़ा ले लें तो 5 मिनट के लिए
जी.
तो भी यह क्रम का बीज हृदय में अवश्य बोया हुआ है, हमारे हृदय में इस क्रम का बीज बो गया है, बोया हुआ है, और यही सुखर हुआ है. सृष्टि का पूरा राज्य से जो सुख मिलने की हमें आशा नहीं थी, उसके अलावा किसी भी प्रकार से औषध से, साधन से, स्त्री से, पुत्र से, मित्र से, या दूसरे अनेक उपाय से जो अंतर शांति होने वाली नहीं थी वह हुई है. तो भी इस क्रम का बीज हृदय में अवश्य बोया है और यही सुखकर हुआ है. सृष्टि के पूरा राज्य से भी जो सुख मिलने की आशा नहीं थी, उपरांत कोई भी प्रकार से औषध से, साधन से, स्त्री से, पुत्र से, मित्र से, या किसी अनेक उपचार से जो अंतर शांति होने वाली नहीं थी वह अब हुई है. क्रम में आते ही कितनी तसल्ली हो जाती है, कितनी प्रतीति होती है, निरंतर की भविष्य काल की भीति गई है, हमेश के लिए भविष्य की कोई भाई प्रकृति हमें है
नहीं,
वो भीति सब चली गई है, और एक साधारण उपजीवन में प्रवर्तने वाला ऐसा आपका मित्र, दोनों मित्र हो गए हैं, और साधारण उपजीवन मैंने एक साधारण वणिक का जीवन है, मेरा व्यापार साधारण करता हूँ बंबई में, एक साधारण उपजीवन में प्रवर्तने वाला ऐसा आपका मित्र इसी कारण से जिंदा रहा है, इसी कारण से जी रहा है, वरना उसको जीने का कोई विचार नहीं था, इसलिए वो जी रहा है, नहीं तो जीने की भी मुझे अवश्य शंका ही थी कि मैं जिंदा रह पाऊंगा, ये मिल गया क्रम में आ गया तो मैं जिंदा हूँ, वरना तो मैं जिंदा भी नहीं रह सकता। विशेष क्या कहना, ये भ्रमणा नहीं है, ये भ्रम नहीं है, एक नक्कर सत्य है। इस काल में एक ही परम प्रिय और जीवन वस्तु की प्राप्ति और इसका बीजारोपण कैसे और क्यों होता है, इस व्याख्या का प्रसंग इस पत्र में इधर नहीं है, परंतु अवश्य यही मुझे तो त्रिकाल सम्मत हो इतना ही कहने का प्रसंग है। कारण कि लिखने का समय बहुत थोड़ा है मेरे पास, ऐसा प्रिय जीवन सभी जीव को प्राप्त हो जाए, सर्व इसके योग्य हो जाए, सर्व को प्रिय लगे, सर्व में वो इसकी ऐसी रुचि हो, ऐसा भूतकाल तो नहीं बना है, वर्तमान काल में बनने वाला नहीं और भविष्य काल में भी बनेगा असंभवित है। यही कारण से इस जगत की विचित्रता त्रिकाल रहने वाली है। देखो ऐसा करके ये पत्र पूर्ण रख दिया है।
तो क्रम तो बताया ही नहीं।
हाँ क्रम नहीं बताया है, लेकिन क्रम के प्रति ध्यान खींचा है। क्रम की चर्चा में बीचने में वो आ गई कि क्रम ऐसा होता है कि जिसको पूर्ण शुद्धि का ध्येय होता है, लक्ष्य होता है, यहाँ से ही इस जीवन का इस मार्ग में प्रवेश होने के पहले का क्रम यहाँ से शुरू होता है। ये फाउंडेशन का स्टोन है, बनने हो जाए तो फिर आगे की जो बात है उसके जो भी क्रम है वो हमने मंगल प्रारंभ में लिया है, आपको मिल जाएगा। मुझे दे दिया है आपको, उसमें आप पढ़ने ना फिर चर्चा करेंगे, उसमें सब दिया है, फिर आगे का क्रम क्या है, फिर क्या है, फिर क्या है, वचनावली में, वचनावली में संतों शू लिखो छे, पत्र नु नाम पूछे पूछे बसो एक माँ पूछे। वास्तव में आत्मा का सुख का ऐसा कंपेरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि इंद्र का सुख है वो सुख नहीं है, दुख है। देखो जितना भी वैभव है इंद्रासन को करता है तो समय करते हो तो दुख नहीं पड़े, दुख का कारण
जैसे आंगन है तो घर में बिना आंगन कोई घर में आ सकता नहीं, सीधा ही तो घर में आएगा, तो आंगन फिर भी आंगन है, वो आंगन में घर है। स्वरूप चिंतन होता है विकल्प के काल में, स्वविकल्प दशा में स्वरूप चिंतन, तो निर्विकल्प दशा है वो प्रतिपक्ष में जाती है। क्या है किसी भी बात को, किसी भी सिचुएशन को दो तरफ से देखने का प्रकार है। जैसे कोई यहाँ से यहाँ जाता है तो यहाँ से देखो तो दूर जाता है, यहाँ से देखो तो नजदीक आता है, चलने वाला यहाँ से चल करके यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ कोई खड़ा रहता है कोई यहाँ खड़ा रहता है, यहाँ देखने वाला देखता है कि दूर जाता है, ऐसे परिणाम को भी ऊपर से भी देखने का एक एंगल है, एक नीचे से भी देखने का एक एंगल है। नीचे से देखते हैं तो स्वरूप चिंतन में आगे बढ़ रहा है, क्योंकि आगे ले रही तो दिशा है। जब ऊपर से देखो तो निर्विकल से सविकल्प विरुद्ध है, उसको छोड़ के उसको मनाना है। ऐसे सीधी पकड़ में पैर रखते हैं रखते हैं उठा लेते हैं, तो रखा इसका मतलब क्यों उठा लेने के लिए, क्यों रखा सीढ़ी पर पैर उठाने के लिए उठा लेने के लिए। ऐसे समय दृष्टि का भी परिणाम ऊपर नीचे से देखा जाता है। नीचे से देखो वैसे व्यवहार से इसको चिंता नहीं है, ये नीचे की दृष्टि हुई व्यवहार दृष्टि कि बिना स्वरूप चिंतन किसी को अनुभव होता है। क्यों बिना स्वरूप चिंतन दूसरा पदार्थ का चिंतन होता है, आत्मस्वरूप का चिंतन नहीं होता, अन्य पदार्थ का चिंतन से तो स्वरूप का अनुभव होगा नहीं। तो स्वरूप का अनुभव होने के लिए सविकल्प दशा में स्वरूप चिंतन ही चलेगा। नीचे से देखो तो वो अनुकूल है, नीचे मतलब क्या इसके नीचे का परिणाम तो प्रत्याशित, ऊपर से देखो तो प्रतिकूल है। जहां तक विकल्प रहेगा वहां तक मेरे विकल्प नहीं होगा, जहां तक विकल्प चालू रहेगा विकल्प होगा नहीं। तो ये विकल्प प्रतिकूल वही बाधा है, तो मेरे विकल्प होने में यहाँ बाधा कौन सी विकल्प दशा है वही बाधा है। ऊपर से देखो तो प्रतिकूल है, नीचे से देखो तो अनुकूल है। ऐसे दो दृष्टि है बात है, कभी कोई बात ऊपर से आती है कभी कोई बात नीचे से आती है, लगती है परस्पर विरुद्ध। जिसको अनुकूल कहते हैं उसको प्रतिकूल कैसे कहते हैं, बात तो दोनों सही है। इसलिए ऊपर जाने वाले को तो ऊपर देखना है, नीचे नहीं देखना है। तो विकल्प में तो हम खड़े हैं, अपना का विकल्प करते भी है, हमें उसको वहां से तो हमें हटना है, यहाँ से तो पैर उठाना है। उनको जो लोग आत्म विचार नहीं करते, आत्मा का चिंतन नहीं करते, ऐसे लोगों को कहते हैं कि तुम दूसरे लोग के काम में पड़े हो, उनका तो स्मरण करो। जो नहीं करते उसको सुनते, लेकिन जो करते हैं उसको क्या कहेंगे, कहाँ तक विकल्प में बैठे रहो, कहाँ तक विकल्प करते रहो, तो मेरी तो होना है। उद्देश्य भी भिन्न स्तर के भिन्न योग्यता वाले जीव को उद्देश्य में समझना है, जो जिसको लागू करता है उसको अपने लिए उसको अपने हमको लागू करना है, हमारे सुधार के बाद
बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी
इसमें क्या है कि भाव भाषण के काल में निर्विकल्प ज्ञान वेदन से निर्विकल्प स्वरूप पूरा का पूरा भाषित हो जाता है और उसका वो लक्ष्मण से हटता है कि मैं ऐसा हूँ, वो लक्ष्मण से छूटता है। अब जो विकल्प चलता है निर्विकल्पता के पहले, उसमें लक्ष्मण निर्विकल्प स्वरूप है और विकल्प चलता है, तो लक्ष्मय जो है उसकी मुख्यता है, उस पर जोर है। जो विकल्प चलता है उस पर लक्ष्मी नहीं, उस पर जोर भी नहीं
बराबर।
तो जो स्वरूप लक्ष्मय है उसका रस बढ़ जाता है, मुख्यता इसके होने से रस बढ़ जाएगा। तो रस बढ़ते 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 जितना रस बढ़ता जाएगा उतना विकल्प है वो मंद होता जाएगा। बहुत अच्छा मैंने पतला होता जाएगा, अंतर्जल होता जाएगा, स्थूल में से सूक्ष्म होता जाएगा और सूक्ष्म होता जाएगा और सूक्ष्म होता जाएगा, ये विकल्प की हालत होगी। और जो निर्विकल्प स्वरूप है उसका लक्ष्य है, उस प्रति का जो भाव है वो तीव्र होता जाएगा। ऐसे एक ऐसा अवसर आता है तो शांत हो जाता है,
स्वयं हो जाता है,
स्वयं शांत हो जाता है। लक्ष्य है नहीं इसके प्रति क्या हो रहा है, तो स्वयं शांत हो जाता है। तो जैसा लक्ष्य है वैसी एकाकार दिशा हो जाती है, उसको निर्विकल्प दिशा। इस तरह से बिना लक्ष्य बिना भाव दर्शन अनुभव नहीं होता, इसका ये कारण, इसका संकेत का कारण बोला, इसलिए लक्ष्य को तो ज्ञान लक्षण से जो सनातन स्फुरित है ऐसा ज्ञान लक्षण से लक्षित होता है आत्मा। तीन काल में बिना ज्ञान लक्षण ज्ञान से मानी आत्मा का लक्षण सिद्धांत है, अपर सिद्धांत है सिद्धांत। तो ज्ञान लक्षण से ही पूरा ज्ञान समाधि आत्मा लक्षण है। इसमें वर्तमान जो ज्ञान वेदन है ये एक आधार है लक्षण होने का, इसके आधार से ही स्वरूप का लक्षण हो जाता है। बराबर ये लक्षण लक्षण की चर्चा हो गया हमें शंकराचार्य समय साल को विशिष्ट ये एक ही विधि एक ही प्रकार है, दूसरा किसी के लिए कोई प्रकार नहीं है। ज्ञान के ऊपर साधनम साधन आदि दिखाई देता है, दूसरा साधन है मेरे को माने कैसे जैसा ज्ञान देते हैं अनुमान करना नहीं पड़ता प्रगट लक्षण में है
शक्ति मान दिया
दिव्य शक्ति मान नजर अपना पड़ा है। जीव जो आनंद लेता है सुख लेता है वो सदोष लेता है, जितना भी बाहर का पंचम के विषय का भोगो का परिणाम तो ऐसा आनंद बंधन में पड़ता है और निर्दोष सुख निर्दोष आनंद है वो तो आत्मा का है। हमें कैसे का मतलब है कि तो पूरा पुरुषार्थ कर गए पूरा उद्यम कर गए आत्मा का सुख आत्मा का आनंद को उनको प्राप्त करो, जिस पाप प्राप्त करने से जिससे ये दिव्य शक्ति मार बंधन से मुक्त हो जाएगा दिव्य से मुक्त हो जाएगा ऐसा करो ऐसे
सुख आनंद जुड़ा गया
मैंने मंदा कुंता को होने दीजिए मैंने मंदा कुंता को जाने दीजिए
नहीं होती हो तो जाने दीजिए પૂરો પ્રયત્ન કરીને આ કામ કરવું છે મારે ભાવભાષણ કરાશે કરાશે જ્ઞાન દેખો અપને જ્ઞાન उपयोग को देखो वहां पर ज्ञान वेदन है ज्ञान वेदन है वो ज्ञान सामान्य रूप ज्ञान वेदन है प्रत्यक्षता है प्रत्यक्ष तौर से अपनी प्रत्यक्षता को देखो परोक्ष में रह करके नहीं परोक्ष में रह करके मतलब विचार करके नहीं जो चल रहा है इस वेदन को अनुभव करो इस अनुभूति को अनुभव करो चल ही रहा है तो जैसे उनको नहीं समझ में आता है और दौर से देखो और भीतर से जो दौर से देखो ध्यान से देखो चल ही रहा है चल ही रहा है चल ही रहा है तो जो चल रहा है उसको उद्योग में लेता है उनको नजर आता है कि ज्ञान स्वभाव क्या है स्वभाव लक्ष्यगत हो गया वो भी बीज ज्ञान है अवभाषण को स्वरूप का लक्ष्य को और उसकी पहचान को ये बीज ज्ञान है ये बीज ज्ञान होने से चरित्र में दे देखिए इतना महान मैं इतना महान चलते हुए प्रेम में ज्ञान स्वयं को भी स्वयं के वेदन को भीतर में सावधान होकर के अनुमान से प्रकृति प्रकृति में विश्वास आ जाता है। परमार्थ की डिस्कशन की जब देखे थे परमार्थ की स्पष्ट अनुभवान से प्रतिपति थी अनुभवान से मैंने वेदन इससे क्या फर्क है इसमें विचार है उसमें राग और ज्ञान दो पर्याय में ज्ञान राग का आधार से ज्ञान करता है ज्ञान का पर्याय विचार ज्ञान में विचार दशा में राग का आधार से प्रवर्तित हो रहा है
ज्ञान राग नो आधार
अनादि से वही विचार दशा की स्थिति है। अब क्या हो रहा है बीज ज्ञान के कारण कि ज्ञान स्वयं का आधार से मैंने राग सविकल्प दशा है विचार दशा है उसमें जो राग है उसकी उपेक्षा करके उसका आधार छोड़ करके स्वयं के आधार से प्रवर्तित होता है तो अपना वेदन से वो पूरा अपना ज्ञान लक्ष्य में ले लेता है पहचान कर लेता है
स्वतंत्र बन
जैसे एक सोने की लकड़ी है उसको कसौटी पर घिसते हैं लकड़ी आती है तो स्वयं पर जो लकीर है वो क्या है
एम्पायर
उपयोग लकीर पर है
बराबर
कैसे है लक्ष्य में लकड़ी पूरी ऐसी है ऐसा आएगा
बराबर
कैसे काम होता है आप
बराबर
उपयोग लकीर पे है तो कैसे कितना लाइट मारती है सोने का जो तेज है वो कितना आता है पीलापन वो सोना नहीं है सोना ही सोना है पीला तो पिटल भी होता
है
जो सोने की जिसको कहता है वो तो एक लकड़ से पकड़ता है कि लकड़ी पर सोना पीता है उपयोग लकड़ पे और लक्ष्य में पूरी नहीं
बहुत अच्छी बात
ऐसे ज्ञान वेदन को ग्रहण करते ही पूरा ज्ञान स्वभाव ऐसा है ऐसा लक्ष्य मारता है ऐसे भी ज्ञान
ज्ञानाकार ज्ञान
ज्ञानाकार ज्ञान को वेदन भूत ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान को और उस वक्त ज्ञान के आधार से ज्ञान होता है तो अंतर्मुक्ता स्वसन मुक्ता आ जाती है
बराबर
वेदन स्वयं वेदा जाता है वेदन स्वयं वेदा जाता है
हाजी
परोक्ष होता नहीं तो प्रत्यक्षता क्या चीज है वही समझ में आती है पहचानने में आती है कषाय के अभाव स्वरूप होने से शांति आत्म शांति क्या चीज है आत्मा का सुख क्या चीज है वो उसका भी पहचान आता है ज्ञान का रूप ही सुख नहीं समझ में आता है ये तो ज्ञान तो सुख रूप है बस रूप से पहचान होती है मनुष्य तो मनुष्य है इसका रूप से पहचान होती है
जो अंदर में ऑटोमेटिक क्रिया हो रही है वेदन की ज्ञान की उसमें उपयोग को बैठ जाने का है
राग से छुड़ा करके उतर ले जाता सुविधा यह है इसमें निरंतर वेदन चल रहा है गोपाल गोपाल को अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा निरंतर प्रकृति सदा ही अंतरिक्ष में प्रकाशमान है
बराबर
अंतरंग में वो प्रकाश मान्य है वही प्रकाश है और तो सब अंधेरा ही है
बराबर
प्रकाश तो उतना ही है तो इस प्रकाश को दिखलाते हैं दर्शाते हैं ज्ञान जो योग्य मनुष्य है उसको ये विषय अंतर में अपने आप को वो कहते हैं जैसे वो भीतर में देखता है, कहते हैं और कोशिश करके करता है भीतर में देखने, और कोशिश करता है कोशिश करते हैं जम
जाता है
वो, जिसको करना है उसको कोई प्रतिबंध नहीं है, जिसको ये काम कर ही लेना है उसको प्रतिबंध कौन सा,
कोई
भीतर में तो अपने भाव के सिवाय कोई तो आड़ा आता नहीं आ सकता है।
अपनी सत्ता गुप्त कैसे रहेगी, कल आया था प्रवचन में श्रीमद जी का टोपी ठोकी ने जिन्हें सर भगवान ने बताया है कि एक आदमी समझे
अपने से अपने आप को गुप्त रहना कैसे हो सकता है, वो तो प्रश्न कर रहे
हैं नहीं है
तो हो सके ही नहीं, बन सकता ही नहीं,
बहुत
कितना जोर से बात
है।
उधर ही वो रखा है हमारे के समुद्र के किनारे पर टूटा है और उस पर पीठ रखता है समुद्र के दिशा में, जैसे हम चौपाटी पर खड़े हैं और मरीन लाइन पे हमारा मुख है और हम कहते तो इतना बड़ा समुद्र है हमको तो एक बूंद भी नहीं दिखाई
दे, कहते देखिए
आप कहेंगे कि कितना पानी है समुद्र में, अगाध पानी है, बहुत बड़ा समुद्र है, सामने किनारा नहीं दिखे उतना बड़ा है, हाँ क्षितिज देखो तो कहीं भी जमीन नहीं देखते, तो मुंह फिर के खड़ा हो तो प्रश्न करो कि एक पानी की बूंद भी नहीं दिखती है, अगाध पानी क्या, पानी की बूंद भी नहीं दिखाई
देती, यही बात यही
दिशा का चिंता सीखा है
धारा तो का सागर के सामने बोल रहा है उपयोग की बोल है सारा
इधर है तो प्रकाश में दिखता है जो उधर आया परमात्मा तो कारण परमात्मा के रूप में खड़ा है
बराबर
थकता नहीं कभी खड़ा ही रहता है अनंत काल से खड़ा है अनंत काल पर खड़ा ही रहने वाला है वो तो थकता ही
और उसका ऑटोमेटिक परिमन चालू है
और परमात्मा विचार होता है इसका अनादर करो आदर करो उसको कोई लेना देना हमारे परमात्मा का अनादर किया उसका आदर नहीं किया फिर भी वो
तो वही है
वो चले नहीं गए रहे हैं
मगर अनादि काल का जो ढांचा उल्टा पड़ गया है ना इसलिए अनंत नहीं है अनंत
लेकिन जिसका उत्साहित नहीं है उत्साहित वीर्यवान तर्क पाने का मुख्य अधिकारी है जिसको अपना काम करने का उत्साह ऊपर से आता है मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है एक मेरा काम करना है इससे मेरा प्रयोजन है दूसरा कोई मुझे प्रयोजन
कोई बस
तो उनके लिए सुगम है सरल है सब सुगम है सब सरल है सरल तो इसकी प्राप्ति होती है इसके लिए आत्मा प्रकट है अत्यंत प्रत्यक्ष है क्योंकि स्वसंवेदन अनुभव गोचर है सब सदस्य में लिया
बहुत अच्छी
प्रकट है अत्यंत प्रत्यक्ष है
स्वसंवेदन अनुभव गोचर ये वाक्य रोज स्मरण में रहता है के आधार से भी आगे बढ़े बहुत अच्छी
टुकड़ा तो उतना है छोटा
एकदम स्पष्ट हो गया आखी साधना की विधि
और कितना बढ़िया
हा दिया
आत्मा को देखने के लिए प्रयास करते हैं कैसा होगा आत्मा का दर्शन कैसा होगा रूपी पदार्थ थोड़ा देखा जाता है उसका अस्तित्व है वो वेदन हो सकता
है
वेदन से अस्तित्व मालूम पड़ता है कि मैं हूँ यहाँ मेरा ज्ञान वेदन है
वाही मैं हूँ
अस्तित्व ग्रहण उसी को भाव का सब करते हैं।
बस प्रोसेस की बात ही बाकी बहुत अच्छी बात
प्रकरण ऐसा
बराबर
कि जिसका इस विषय में जितनी सूक्ष्मता है जिसका इसको का प्रयास करता है उसमें जो सूक्ष्मता है उसमें से जहाँ भी वो आगे नहीं बढ़ पाता है वहाँ से वो जिज्ञासा उठती है तो दूसरी पॉइंट ऊपर को खींच के ले आएगा ये प्रश्न इस चीज के पास ले आएगा ऐसा आत्ममार्ग में चलने के लिए प्रयास करता है तब जो जो उनकी योग्यता में रहा हुआ प्रतिबंध है वो आम सामने आने लगता है आप नहीं बता रहे हैं नहीं बता तो इसके साथ में लड़ाई कर अब मुझे किसी का काम
नहीं है
आगे तुमसे प्रेरित किया था हमारा रस भी हुआ था अब जो है अब जो होकर के निकल गए
वन में एक देखिए वन में
अब किसी से काम हमारा
नहीं
तो जो भी आएगा वो जो भी योग्यता में पड़ा होगा ये परिणाम सामने आएगा
आएगा
आनंद अब हम तैयार हैं ऐसे करा देर सवेर होने का कारण मन था ये तो खुश तरह था लेकिन ये जहाँ जहाँ हमने रस लिया हो और रस लेने के कारण से जैसे भी योग्यता कारण रूप पड़ी हो उसका काल पक जाएगा वो बाहर आने लगेगी
बराबर
अब जो है कि हमें हमारा प्रयोजन से ही मतलब है तो बिना प्रयोजन वाली कोई भी चीज से हमें गुण होना अपेक्षा होना बहुत आसान बात है
बराबर
आपत्ति में कोई भी करना नहीं चैतन्य विवेका उछाला आए बिना ऐसे वस्तु ऐसे देखो ना सिद्ध परमात्मा अनंत काल तक एक अंश भी क्यों विचलित नहीं होते हैं लोग उसके ज्ञान में प्रतिबिंब होते हैं एक अंश भी ज्ञान का विचलित क्यों नहीं होता
बराबर
लोकालोक से भी अद्भुत ऐसी कौन सी चीज इसके उपयोग में है
हाजी
कि लोकालोक की कोई चीज उसको एक अंश एक समय के लिए विचलित नहीं कर सकता
क्या चिंतन
एक समय के लिए भी नहीं और एक अंश भी नहीं इसका उपयोग का अनंत अविभाग प्रतिच्छेद है इसके ज्ञान एक प्रतिच्छेद भी नहीं और एक समय के लिए भी नहीं क्यों ऐसा क्यों वस्तु ऐसी है इसलिए आत्मा ऐसा है इसलिए
बहुत अच्छा
साक्षात करना
सीधी लाइन
तो जैसे कुछ दिखता ही नहीं दिखता होने पर भी
नहीं।